एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं का आज के इस विचार विमर्श में बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आज की दुनिया को समझने के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है, यूरोपीय संघ। और इसे हम देखेंगे एक खास नजरिए से, जॉन पिंडार के विश्लेषण के जरिए।
बिल्कुल, जॉन पिंडार का नाम यूरोपीय एकीकरण के अध्ययन में बहुत सम्मान से लिया जाता है। वे ब्रिटेन के उन विद्वानों में से थीं जिन्होंने न सिर्फ इस पर गहराई से लिखा बल्कि यूरोपीय संघ के विचार को जिया भी। आज हम उनकी किताब द यूरोपियन यूनियन और उनके जो दूसरे लेख हैं उनमें छिपे मुख्य विचारों और तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है बल्कि एक गहरी समझ है, है ना?
हाँ, और ये समझना आज इतना अहम क्यों है? मतलब क्यों बात कर रहे हैं हम ईयू पर? क्योंकि यूरोपीय संघ महज कुछ देशों का समूह तो नहीं है, ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग है। सोचिए जरा, एक ऐसा महाद्वीप जो सदियों तक युद्धों की आग में जलता रहा, वहां शांति, समृद्धि और सहयोग का एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश, ये अपने आप में बड़ी बात है।
सही कहा। ये कहानी है इस बात की कि कैसे राष्ट्र राज्य अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी संप्रभुता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी, उसका कुछ हिस्सा साझा करके सबके लिए कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं।
और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा।
तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिनके नजरिए से हम ईयू को समझ रहे हैं, जॉन पिंडार। जॉन पिंडार 1924 to 2015 सिर्फ एक कमरे में बैठकर लिखने वाले एकेडमिक नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, वो ब्रुक्स के प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ यूरोप में प्रोफेसर थीं, लंदन में पॉलिसी स्टडीज इंस्टीट्यूट के निदेशक भी रहीं, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं आगे थी।
हाँ, और शायद यही बात उनके विश्लेषण को खास बनाती है। पिंडार यूरोपीय एकता के सिर्फ विश्लेषक नहीं थे बल्कि इसके प्रबल समर्थक और इस आंदोलन में सक्रिय भागीदार भी थे, है ना?
बिल्कुल, उन्होंने यूरोपीय संघ को अपनी आंखों के सामने, मतलब शुरुआती विचारों से लेकर एक विशाल संस्था बनने तक विकसित होते देखा। तो उनका नजरिया सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं टिका था बल्कि जमीनी हकीकत, जो बहसें होती थीं, जो व्यवहारिक अनुभव थे, उन पर आधारित था।
अच्छा, तो वो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को समझते थे।
हाँ, वो ईयू की मशीनरी के पुर्जे गिनाने के बजाय उसकी आत्मा, उसके पीछे की सोच को पकड़ती हैं। उन्होंने देखा कि कैसे कागज पर बने प्लान हकीकत में बदलते हैं और कहाँ मुश्किलें आती हैं।
जॉन पिंडार का काम यूरोपीय संघ जैसी जटिल, कई परतों वाली संस्था को हम जैसे आम लोगों के लिए समझना आसान बनाता है। उनकी किताबें या लेख सिर्फ ये नहीं बताते कि ईयू क्या है या कौन कौन सी संधियां हुई, वो इससे आगे जाते हैं।
हाँ, वो पूछते हैं ये क्यों बना, ये काम कैसे करता है, इसके अंदरूनी खींचतान क्या है और इसका भविष्य किस दिशा में जा सकता है,
और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी सरल भाषा में समझाते हैं।
विंडार का जो केंद्रीय तर्क है वो काफी क्रांतिकारी है। जैसा आपने शुरू में कहा, वो कहती हैं कि यूरोपीय संघ असल में युद्धों से तबाह हुए यूरोप, खासकर उस जर्मन समस्या का जवाब है जिसने दो विश्व युद्धों को जन्म दिया था।
जर्मन समस्या, हाँ।
उनका विश्लेषण दिखाता है कि कैसे आर्थिक एकीकरण, जैसे कोयला और स्टील जैसे युद्ध के लिए जरूरी संसाधनों को साझा नियंत्रण में लाना, असल में एक राजनीतिक हथियार था।
अच्छा, मतलब इकोनॉमिक्स एक टूल था।
हाँ बिल्कुल, असली मकसद व्यापार बढ़ाना नहीं था बल्कि स्थायी शांति स्थापित करना था। अर्थव्यवस्था तो बस एक जरिया थी, मंजिल राजनीति और शांति थी।
बिल्कुल, और वो इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो सदियों से जानी दुश्मन थे, आखिर कैसे शांति, साझा समृद्धि और कानून के राज पर आधारित एक व्यवस्था बनाने पर राजी हुए। ये बड़ा सवाल है।
हाँ, और इसका राज पिंडार के अनुसार कम्युनिटी मेथड में छिपा है।
कम्युनिटी मेथड, ये क्या चीज है?
ये एक अनोखा तरीका है जहाँ सदस्य देश अपनी मर्जी से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का कुछ हिस्सा साझा करते हैं और उसे सुप्रानेशनल, यानी राष्ट्रों से ऊपर की संस्थाओं को सौंपते हैं।
सुप्रानेशनल, राष्ट्रों से ऊपर।
हाँ, और ये संस्थाएं फिर ऐसे फैसले ले सकती हैं जो सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। ये कोई जादू की तरह नहीं हुआ, बल्कि सोची समझी रणनीति थी।
अच्छा, तो चलिए अब पिंडार के विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है।
इसकी जड़ें हैं दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही में। यूरोप खंडर बन चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे, और जो सदियों पुरानी राष्ट्र राज्य व्यवस्था थी, जिसमें हर देश सिर्फ अपने हित साधता था, वो बुरी तरह नाकाम साबित हो चुकी थी।
हाँ, मतलब सबने देख लिया था कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा।
बिल्कुल, एक हताशा का माहौल था, लेकिन साथ ही कुछ नया करने की इच्छा भी थी।
उसी निराशा के माहौल में जीन मोनेट और रॉबर्ट शुमन जैसे दूरदर्शी नेताओं ने एक ऐसा विचार पेश किया जो उस वक्त शायद पागलपन लगता।
हाँ, 9 मई 1950 को शुमन ने घोषणा की। उसमें प्रस्ताव था कि फ्रांस और जर्मनी, दो कट्टर दुश्मन, अपने कोयला और स्टील उत्पादन को एक साझा स्वतंत्र हाई अथॉरिटी के नियंत्रण में ले आएं।
कोयला और स्टील, सोचिए वो संसाधन जिनके दम पर युद्ध लड़े जाते थे, उन्हें ही साझा करने की बात, ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा।
हाँ, और मकसद एकदम साफ और बहुत बड़ा था, युद्ध को न केवल अकल्पनीय बल्कि भौतिक रूप से असंभव बना देना।
अच्छा, मतलब अगर हथियारी कॉमन हो तो लड़ेंगे कैसे।
बिल्कुल यही सोच थी। इसी विचार से 1951 में यूरोपीय कोयला और स्पात समुदाय ESEC का जन्म हुआ। 6 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग।
अच्छा, ये 6 देश।
हाँ, यही आज के विशाल यूरोपीय संघ का बीच था। पिंडार जोर देती हैं कि ये शुरुआत आर्थिक कम, राजनीतिक और नैतिक ज्यादा थी। ये शांति स्थापित करने का एक बेहद व्यावहारिक ठोस तरीका था।
अब आते हैं उस अनोखे तरीके पर जिससे EU काम करता है, जिसे पिंडार कम्युनिटी मेथड कहते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि EU ना तो अमेरिका जैसा एक देश है और ना ही UN जैसा कोई सामान्य संगठन, ये कुछ अलग है।
हाँ, अपनी तरह का अनोखा। इसमें दो तरह के तौर तरीके मिले हुए हैं। एक है इंटर गवर्नमेंटलिज्म, यानी जहां सदस्य देशों की सरकारें आपस में सहयोग करती हैं, लेकिन हर देश के पास वीटो पावर होता है और वो अपनी पूरी संप्रभुता बनाए रखता है।
मतलब सबकी सहमति जरूरी है।
हाँ, फैसले सर्वसम्मति से होते हैं।
और दूसरा जो इसे खास बनाता है
वो है सुपरनेशनलिज्म। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। सदस्य देश अपनी मर्जी से अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा साझा संस्थाओं को सौंप देते हैं।
अच्छा,
ये संस्थाएं फिर सबके लिए बाध्यकारी नियम बना सकती हैं और कई मामलों में फैसले बहुमत से होते हैं।
बहुमत से मतलब कोई एक देश अकेले किसी फैसले को रोक नहीं सकता।
नहीं, अगर बहुमत उसके पक्ष में है तो नहीं रोक सकता। पिंडार इसे पूल्ड सॉवरेनिटी,
अच्छा,
या साझा संप्रभुता कहती हैं।
पूल्ड सॉवरेनिटी,
हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कई लोग अपनी अपनी बाल्टी का पानी एक साथ मिलाकर एक स्विमिंग पूल बना लें। अकेले शायद तैरने लायक पानी ना हो, पर मिलकर एक बड़ा पूल बन जाता है जहां सब तैर सकें।
अच्छा उदाहरण है।
यहां देश अपनी कुछ फैसले लेने की ताकत, पानी, एक साझा संस्था पूल में डालते हैं, जिससे वो काम हो सकें जो अकेले करना मुमकिन नहीं था।
तो इस मिलीजुली व्यवस्था को चलाने वाली मुख्य संस्थाएं कौन सी हैं?
सबसे पहले यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन। इसे EU का इंजन कह सकते हैं। ये सुप्रानेशनल है।
अच्छा।
मतलब सदस्य देशों से ऊपर उठ के काम करता है।
ठीक है।
इंजन। ये संधियों का संरक्षक है, नए कानून प्रस्तावित करता है और रोजमर्रा का काम देखता है।
ओके, और
फिर है यूरोपीय संघ परिषद, काउंसिल ऑफ द EU। यहाँ सदस्य देशों के मंत्री मिलते हैं, जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री।
अच्छा, मिनिस्टर्स की मीटिंग।
हाँ, ये राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है और आयोग द्वारा प्रस्तावित कानूनों को मंजूरी देती है। यहाँ इंटरगवर्नमेंटल और सुप्रानेशनल दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं।
तीसरी
अहम कड़ी है यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट। इसके सदस्य सीधे यूरोपीय नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं।
अच्छा, ये डायरेक्ट इलेक्शन से।
हाँ, शुरुआत में इसकी शक्तियाँ सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई। आज ये परिषद के साथ मिलकर कानून बनाने का काम करती है, जिससे EU में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है।
और चौथी, आपने कहा था 4 हैं?
हाँ, चौथी और शायद सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक, यूरोपीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस, CJEU। इसे महज एक अदालत न समझें, ये एक तरह की सुपरनेशनल संवैधानिक अदालत है जिसने कई बार अपने फैसलों से यूरोपीय एकीकरण को सरकारों की मर्जी से भी ज्यादा आगे बढ़ाया है।
अरे वाह।
यह सुनिश्चित करती है कि ईयू कानून हर सदस्य देश के राष्ट्रीय कानून से ऊपर माना जाए और पूरे संघ में एक समान लागू हो। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है।
पिंडार बताते हैं कि इन्हीं संस्थाओं, आयोग, परिषद, संसद और न्यायालय के बीच का जो जटिल संतुलन है, जिसे संस्थागत संतुलन कहते हैं, वही ईयू की कार्यप्रणाली का दिल है।
बिल्कुल, और ये संतुलन हमेशा बदलता रहता है, इसमें लगातार खींचतान चलती रहती है, लेकिन यही इसकी खासियत भी है।
चलिए अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर ये ढांचा खड़ा है, आर्थिक एकीकरण, खासकर एकल बाजार या सिंगल मार्केट।
हाँ, ये शायद यूरो की सबसे ठोस, सबसे दिखने वाली और सबसे सफल उपलब्धि है। इसकी कहानी 1957 की रोम संधि से शुरू होती है, जिसने ईएसएस के दायरे को बढ़ाकर एक साझा बाजार बनाने का लक्ष्य रखा।
कॉमन मार्केट?
हाँ, इसमें कस्टम यूनियन बनाना शामिल था, यानी सदस्य देशों के बीच व्यापार पर सारे शुल्क हटाना और बाहरी दुनिया के लिए एक साझा टैरिफ तय करना।
लेकिन असली उछाल कब आया?
वो आया 1980 के दशक के मध्य में, जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैक्स डेलॉर्स ने सिंगल मार्केट प्रोजेक्ट को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। लक्ष्य था 1992 तक एक ऐसा बाजार बनाना जहां सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि व्यापार में आने वाली हर तरह की बाधा, हर तरह की बाधा, चाहे वो अलग अलग देशों के अलग अलग तकनीकी मानक हों या सेवाओं के व्यापार में रुकावटें या सरकारी खरीद में भेदभाव, सब खत्म हो जाएं।
इसका आधार क्या था?
इसका आधार बनी वो मशहूर चार स्वतंत्रताएं,
फोर फ्रीडम्स।
हाँ, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की सदस्य देशों के बीच पूरी तरह से मुक्त आवाज जाही।
अच्छा, मतलब गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लोग सब फ्रीली मूव कर सकें।
बिल्कुल, यानी जर्मनी में बनी कार बिना किसी रोक टोक के फ्रांस में बिक सके, लंदन का बैंक रोम में अपनी ब्रांच खोल सके, कोई निवेशक अपना पैसा आसानी से एक देश से दूसरे देश में लगा सके
और कोई कहीं भी जाके काम कर सके या पढ़ सके।
हाँ, जैसे स्पेन का नागरिक बेल्जियम में जाके काम कर सके या पढ़ सके। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे लागू करना उतना ही मुश्किल था।
और पिंडार यहाँ पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ पैसों या व्यापार का मामला नहीं था, ये गहरा राजनीतिक कदम था।
सही, इसने सदस्य देशों को एक दूसरे पर इतना निर्भर बना दिया कि उनके हित पहले से कहीं ज्यादा जुड़ गए। इसने एक यूरोपीय पहचान को भी मजबूत किया। इसमें दो तरह के काम शामिल थे, बाधाओं को हटाना, जिसे नेगेटिव इंटीग्रेशन कहते हैं,
जैसे टैरिफ हटाना।
हाँ, और समान नियम और मानक बनाना, जिसे पॉजिटिव इंटीग्रेशन कहते हैं,
जैसे सेफ्टी या एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स तय करना।
बिल्कुल।
सिंगल मार्केट के बाद अगला कदम क्या था? वो और भी बड़ा था शायद।
हाँ, आर्थिक एकीकरण का अगला तार्किक और शायद सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद कदम था यूरो, यानी एकल मुद्रा।
यूरो
तर्क ये था कि अगर बाजार एक है तो मुद्रा भी एक होनी चाहिए। अलग अलग मुद्राएं होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क रहता है, लेन देन में लागत आती है।
हाँ, जो सिंगल मार्केट के पूरे फायदे को कम कर देता है।
बिल्कुल। 1992 की मास्ट्री संधि ने न सिर्फ यूरोपीय संघ ईयू को उसका मौजूदा नाम दिया, बल्कि आर्थिक और मौद्रिक संघ ईएमयू की नींव भी रखी, जिसका अंतिम लक्ष्य यूरो को लॉन्च करना था।
ये तो राष्ट्रीय संप्रभुता का एक बहुत बहुत बड़ा समर्पण था, अपनी करेंसी छोड़ देना।
हाँ, अपना नोट छापना ये किसी भी देश की आज़ादी का प्रतीक होता है, इसे छोड़ना आसान नहीं था, इसीलिए इसके लिए जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति और लंबी बहसें हुई।
और कुछ देश बाहर भी रहे हैं ना?
हाँ, जैसे यूके।
हाँ, ब्रिटेन, डेनमार्क जैसे देश बाहर ही रहे। यूरो को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया?
यूरो को प्रबंधित करने के लिए फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB बनाया गया, जिसका मुख्य काम मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
और नोट कब चलन में आए?
2002 में यूरो के सिक्के और नोट चलन में आए। ये सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि साझा यूरोपीय पहचान और साझा भविष्य का प्रतीक भी बन गया।
लेकिन इसमें चुनौतियां भी थीं।
हाँ, पिंडार और बाद के विश्लेषकों ने इसकी चुनौतियों को भी रेखांकित किया, खासकर ये कि अपने मौद्रिक नीति तो साझा कर ली, लेकिन राजकोषीय नीति यानी टैक्स और खर्च वाले फैसले अभी भी काफी हद तक राष्ट्रीय सरकारों के हाथ में है।
हाँ, ये असंतुलन बाद में दिक्कत बना यूरोजोन क्राइसिस के टाइम।
बिल्कुल।
अब एक और अहम पहलू पर आते हैं, विस्तार यानी एनलार्जमेंट। यू 6 देशों से शुरू हुआ था, आज 27 है, ये कैसे हुआ?
हाँ, ये यात्रा कैसे हुई? पिंडार बताते हैं कि विस्तार यूई की शायद सबसे सफल विदेश नीति रही है।
सबसे सफल विदेश नीति? कैसे?
हाँ, ये वाकई कमाल की बात है, खासकर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और शीत युद्ध खत्म होने के बाद। मध्य और पूर्वी यूरोप के देश जो दशकों से सोवियत प्रभाव में थे आजाद हुए, उनके लिए ईयू की सदस्यता एक बड़ा आकर्षण थी।
अच्छा।
ईयू ने सदस्यता की शर्त रखी, आपको लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन और बाजार अर्थव्यवस्था अपनानी होगी। इस गाजर ने उन देशों में सुधारों को तेज किया।
तो ईयू मेंबरशिप एक इंसेंटिव बन गया रिफॉर्म्स के लिए?
हाँ, 2004 में 10 नए देशों का शामिल होना एक ऐतिहासिक पल था जिसने यूरोप के विभाजन को खत्म किया। इसे यूरोपीय परिवार का पुनर्मिलन कहा गया। इसने यूरोप के बड़े हिस्से में स्थिरता और समृद्धि लाने में मदद की।
लेकिन इस सफलता की कीमत भी थी, जैसा आपने कहा।
हाँ, इतने सारे नए सदस्य जिनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक संस्कृति, प्राथमिकताएं काफी अलग थीं, उनके आने से ईयू और ज्यादा जटिल हो गया, फैसले लेना मुश्किल हो गया।
इससे वो पुरानी बहस फिर तेज हो गई, चौड़ा करना बनाम गहरा करना।
बिल्कुल, वाइडनिंग वर्सेस डीपनिंग, यानी क्या हमें और सदस्य जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए चौड़ा करना, या मौजूदा सदस्यों के बीच एकीकरण को और मजबूत करना चाहिए गहरा करना।
और ये तनाव आज भी मौजूद है।
पिंडार अपने विश्लेषण में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नीतियों का भी जिक्र करती हैं, जैसे साझा कृषि नीति CAP।
हाँ, CAP के बारे में काफी सुना है।
ये शुरुआती नीतियों में से एक थी जिसने किसानों की आय सुनिश्चित की और खाद्य सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन वक्त के साथ ये बहुत महंगी, जटिल और विवादास्पद हो गई। फिर है पर्यावरण नीति, जहाँ ईयू अक्सर दुनिया में सबसे आगे रहता है और कड़े मानक तय करता है।
हाँ, पर्यावरण के मामले में ईयू काफी एक्टिव है।
साझा विदेश और सुरक्षा नीति CFSP, इसमें सदस्य देश मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित अक्सर आड़े आ जाते हैं।
हाँ, विदेश नीति में एक आवाज से बोलना मुश्किल होता होगा इतने सारे देशों के लिए।
बहुत मुश्किल। ये क्षेत्र अभी भी काफी हद तक इंटर गवर्नमेंटल है और यहाँ एक मत होना मुश्किल होता है। जैसे लिबिया या सीरिया के संकट पर एक साझा यूरोपियन स्टैंड बनाना कितना मुश्किल साबित हुआ, ये दिखाता है कि विदेश नीति में संप्रभुता साझा करना कितना जटिल है।
और आखिर में पिंडार उस चुनौती को भी नजरअंदाज नहीं करते जिसे लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट कहा जाता है।
हाँ, ये एक आम भावना है कि ब्रसेल्स, जहाँ ईयू की कई संस्थाएं हैं, वो बहुत दूर है, वहाँ के फैसले जटिल हैं और आम नागरिकों का उन पर सीधा नियंत्रण कम है।
मतलब लोगों को लगता है कि उनसे पूछे बिना फैसले हो रहे हैं।
कुछ हद तक हाँ, हालांकि यूरोपीय संसद की शक्तियाँ बड़ी हैं, फिर भी ये चिंता बनी रहती है। पिंडार ईयू को एक अनफिनिश्ड जर्नी, एक अधूरी यात्रा के रूप में देखती हैं। ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है।
और शायद इसकी असली ताकत इसी में है, संकटों का सामना करके, उनसे सीखकर, खुद को ढालने और बदलने की क्षमता में।
बिल्कुल।
तो अगर हम पिंडार के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बुनियादी संदेश है शांति की स्थापना एकीकरण के जरिए। पिंडार बार बार याद दिलाती हैं कि ईयू दिल से एक शांति परियोजना है, आर्थिक एकीकरण इसका जरिया था, मकसद नहीं।
हाँ, ये बात उन्होंने शुरू में कही थी कि इकोनॉमिक्स बस एक टूल था।
हाँ,
पिंडार का सबसे क्रांतिकारी दावा शायद यही था कि असली शांति सिर्फ संधियों या समझौतों से नहीं आती, बल्कि देशों को आर्थिक और व्यावहारिक रूप से इस तरह गूंथ देने से आती है कि लड़ना उनके अपने स्वार्थ के ही खिलाफ हो जाए।
ये था ESCC का असली जीनियस। बिल्कुल, इसने फ्रांस और जर्मनी जैसे दुश्मनों को साझेदार बनाया, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है स्पिलओवर का तर्क या मॉनेटरी मेथड, ये क्या है?
ये विचार कि एक क्षेत्र में किया गया एकीकरण, जैसे कोयला, स्टील, अपने आप दूसरे क्षेत्रों में और ज्यादा एकीकरण के लिए दबाव और अवसर पैदा करता है।
अच्छा, मतलब एक चीज दूसरी चीज को खींचती है।
हाँ, जैसे साझा बाजार बना तो फिर साझी मुद्रा की जरूरत महसूस हुई, फिर और गहरे सहयोग की जरूरत। इसे फ्रेंच में एंग्रेनाज यानी गियर का फंसना भी कहते हैं। एंग्रेनाज, हाँ, ये दिखाता है कि ईयू का विकास किसी एक मास्टर प्लान के तहत नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से कदम दर कदम आगे बढ़ा है।
ये एक तरह से बताता है कि बड़ी मंजिल तक छोटे छोटे व्यवहारिक कदमों से भी पहुंचा जा सकता है।
तीसरा है संस्थागत नवाचार और कम्युनिटी मेथड। ईयू ने शासन का एक बिल्कुल नया अनूठा मॉडल तैयार किया है, पिंडारेस से सुई जेनेरिस कहती हैं, यानी अपने आप में अनूठा।
सुई जेनेरिस मतलब किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता।
हाँ, ये सुप्रानेशनल और इंटर गवर्नमेंटल तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्र अपनी संप्रभुता को पारंपरिक तरीकों से अलग नए ढंग से पूल कर सकते हैं, यानी एक साथ लाकर साझा कर सकते हैं ताकि बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सके।
चौथा विषय है लोकतंत्र और वैधता का सवाल। जब आप शक्ति को राष्ट्रीय सरकारों से हटाकर सुप्रानेशनल संस्थाओं को देते हैं तो ये सवाल हमेशा उठता है कि ये संस्थाएं किसके प्रति जवाबदेह हैं? क्या ये लोकतांत्रिक हैं?
हाँ, पिंडार मानती हैं कि लोकतांत्रिक घाटे की चिंता जायज है। ईयू इससे लगातार जूझता रहा है। यूरोपीय संसद के बढ़ते अधिकार, राष्ट्रीय संसदों की भूमिका, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिशें, ये सब इसी चुनौती का जवाब देने के प्रयास हैं।
लेकिन ये बहस आज भी जिंदा है कि इतने बड़े और जटिल सिस्टम में लोकतंत्र को कैसे सुनिश्चित किया जाए।
और पांचवा जो मुझे खास तौर पर पसंद है वो है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये ईयू का आधिकारिक आदर्श वाक्य भी है।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
इसका मतलब है कि यूरोपीय सहयोग और एकता बनाते हुए भी सदस्य देशों की अपनी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचानों को बनाए रखना और उनका सम्मान करना।
ये तो बड़ा मुश्किल बैलेंस होगा।
हाँ, बहुत नाजुक संतुलन है। इसमें सब्सिडियरिटी का सिद्धांत मदद करता है।
सब्सिडियरिटी,
यह सिद्धांत कहता है कि फैसले उसी स्तर पर लिए जाने चाहिए जहाँ वे सबसे प्रभावी हों, यानी जो काम स्थानीय स्तर पर हो सकता है उसे राष्ट्रीय या यूरोपीय स्तर पर करने की जरूरत नहीं। ये विविधता को बचाए रखने का एक तरीका है।
पिंडार के काम में कुछ ऐसे विचार या वाक्य हैं जो यूरोपीय संघ की कहानी और उसके मर्म को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। इन्हें सीधे उद्धरण कहना शायद ठीक ना हो, पर ये उनके मुख्य विचारों का सार है। जैसे शुमन घोषणा की भावना को दर्शाता ये विचार।
हाँ, कि कोयला और इस्पात उत्पादन का एकीकरण यूरोप के संघीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम होगा। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे व्यावहारिक कदम को एक बहुत बड़े राजनीतिक लक्ष्य से जोड़ा गया था। ये मोनेट मेथड का सार है।
बिल्कुल। और एक और विचार जो यूके क्रमिक विकास पर जोर देता है।
हाँ, कि
यूरोप एक बार में या किसी एक भव्य योजना के अनुसार नहीं बनेगा, यह ठोस उपलब्धियों के माध्यम से बनेगा जो पहले वास्तविक एकजुटता, डिफैक्टो सॉलिडारिटी पैदा करती हैं।
मतलब पहले साथ मिलकर कुछ करो, उससे भरोसा और जरूरत पैदा होगी और फिर रिश्ता और मजबूत होगा।
बिल्कुल।
ये बताता है कि ईयू हमेशा से एक वर्क इन प्रोग्रेस रहा है और शायद हमेशा रहेगा।
फिर यूरोपीय न्यायालय के प्रभाव को दर्शाता ये विचार।
हाँ, जो उसके एक फैसले का सार है। यूरोपीय संघ कानून का एक नया क्रम बनाता है जिसके लाभ के लिए राज्यों ने सीमित क्षेत्रों में ही सही अपने संप्रभु अधिकार सीमित किए हैं। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी व्याख्याओं ने ईयू को आकार दिया है, कभी कभी सदस्य देशों की शुरुआती मंशा से भी आगे जाकर।
हाँ, इसने ईयू कानून को राष्ट्रीय कानून पर प्राथमिकता दी, जो एक बहुत बड़ा कदम था।
और बेशक ईयू का आदर्श वाक्य
विविधता में एकता,
ये सिर्फ एक नारा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि यह उस रोजमर्रा की चुनौती और उपलब्धि को दर्शाता है जिसमें इतने अलग अलग देशों, भाषाओं, संस्कृतियों और हितों को एक साथ लाना और उनके बीच संतुलन साधना होता है। ये आसान नहीं है, पर यही ईयू की पहचान है।
अंत में ईयू की प्रकृति के बारे में पिंडार का नजरिया
कि यूरोपीय संघ न तो पूरी तरह से एक राज्य है और न ही महज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह एक सुई जेनेरिस, अपने आप में अनूठा इकाई है।
ये स्वीकार करना कि ईयू को किसी बने बनाए खांचे में फिट नहीं किया जा सकता, ये राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक नई चीज है, एक चलता फिरता प्रयोग।
ये सब बातें सुनने में तो बहुत अकेडमिक लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि जॉन पिंडार के इन विचारों का हमारे लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारे समाज के लिए क्या कोई मायने हैं? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं?
मुझे लगता है हाँ, कई स्तरों पर। व्यक्तिगत स्तर पर ही देखें तो मोने मेथड से हम सीख सकते हैं कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी छोटे, संभाले जा सकने वाले कदमों में तोड़कर हासिल किया जा सकता है। एकदम से पहाड़ चढ़ने की कोशिश करने के बजाय पहला कदम बढ़ाना ज्यादा जरूरी है ना?
सही बात है।
और विविधता में एकता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने परिवार, समाज या दफ्तर में अलग अलग विचारों और पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं बिना अपनी या उनकी पहचान को मिटाए।
व्यावसायिक स्तर पर भी यह प्रासंगिक है। जो लोग बड़ी कंपनियों या संगठनों को चलाते हैं वे ईयू के संस्थागत संतुलन से सीख सकती हैं कि कैसे अलग अलग विभागों या हितों के बीच तालमेल बिठाया जाए।
हाँ, और सब्सिडियरिटी का सिद्धांत।
हाँ, सब्सिडियरिटी का सिद्धांत कंपनियों को ये तय करने में मदद कर सकता है कि कौन से फैसले हेडक्वार्टर में लिए जाएं और कौन से स्थानीय टीमों को सौंपे जाएं ताकि वे ज्यादा प्रभावी हों।
और हाँ, सिंगल मार्केट के सिद्धांत आज भी उन लोगों के लिए बेहद अहम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। कैसे बाधाएं हटाई जाएं और साझा मानक बनाए जाएं।
और अगर हम समाज और राजनीति के स्तर पर देखें तो पिंडार का विश्लेषण हमें बहुस्तरीय शासन को समझने में मदद करता है, यानी कैसे स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर एक साथ मिलकर काम करते हैं या करने चाहिए।
आज की दुनिया में तो ये बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिनसे कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता।
बिल्कुल, इनके लिए ऐसे ही बहुस्तरीय सहयोग की जरूरत है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ राष्ट्र राज्य की सीमाओं के अंदर ही संभव है या उससे परे भी इसके नए रूप विकसित हो सकते हैं।
और वैश्विक स्तर पर देखें तो
वैश्विक स्तर पर ईयू का अनुभव अपनी सफलताओं और विफलताओं के साथ दुनिया के अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे दक्षिण एशिया में सार्क, दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान या अफ्रीकी संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक देता है। ये दिखाता है कि संस्थागत सहयोग के जरिए ऐतिहासिक दुश्मनों को भी भागीदार बनाया जा सकता है, जैसा फ्रांस और जर्मनी के साथ हुआ।
ये साझा संप्रभुता का एक मॉडल है, भले ही जटिल हो।
हाँ, एक मॉडल पेश करता है, भले ही ये मॉडल जटिल और हमेशा विवादों में घिरा रहा हो।
मेरे लिए जॉन पिंडार के विश्लेषण से जो सबसे कीमती सबक निकलता है वो ये है कि अलग अलग राष्ट्रों, समुदायों या समूहों के बीच अगर हमें स्थायी और सफल सहयोग बनाना है तो सिर्फ अच्छी नीयत या बड़े बड़े भाषण काफी नहीं होते। हमें ध्यान से सोची समझी मजबूत संस्थाओं की जरूरत होती है।
हाँ, ऐसी संस्थाएं जो अलग अलग हितों के बीच संतुलन बना सकें, पारदर्शिता लाएं, नियम कानून लागू करवा सकें और जिनकी कोई जवाबदेही हो।
ये आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है। पिंडार का काम दिखाता है कि धैर्य, व्यावहारिकता और कदम दर कदम आगे बढ़ने से शांति जैसे बड़े असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।
श्रोताओं को आज की इस चर्चा से ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि यूरोपीय संघ सिर्फ इतिहास की एक कहानी या भूगोल का एक नक्शा नहीं है। ये शासन के नए रूपों को आजमाने की एक जीती जागती प्रयोगशाला है।
हाँ, एक लैब की तरह।
इसका कम्युनिटी मेथड, इसका विविधता में एकता को साधने का प्रयास और राष्ट्र राज्य की पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर सहयोग और लोकतंत्र को विकसित करने की इसकी कोशिश, ये सभी विचार आज यूरोप से बाहर पूरी दुनिया में प्रासंगिक है।
और ये एक हमेशा विकसित होने वाला, एक कभी ना खत्म होने वाला एक अधूरा प्रोजेक्ट है।
हाँ, और शायद इसकी असली ताकत इसी अधूरेपन में है, इसी निरंतर चलते रहने की क्षमता में है कि यह संकटों का सामना करके खुद को ढालता है, बदलता है और आगे बढ़ता रहता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।